लाउडेटर यीशु क्रिस्तुस, प्रभु यीशु मसीह की जय।
यह वाटिकन रेडियो का हिंदी प्रसारण है। आप सबको प्रभु ईश्वर का आशीर्वाद और हमारा अभिवादन।
मासिक प्रार्थना मनोरथ। हे ईश्वर, प्रभु यीशु के नाम पर आपसे समस्त पीड़ितों के लिए हम प्रार्थना करते हैं, ताकि निर्धन, शरणार्थी और हाशिए पर जीवन यापन करने वाले सभी लोग आतिथ्य और सांत्वना के पात्र बने। आमीन। नमस्कार श्रोताओं, आज प्रसारण में प्रस्तुत है पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय, भक्ति गीत और समाचार। कार्यक्रम प्रस्तोता है जूलियट क्रिस्टोफर और सिस्टर उषा तिर्की। श्रोताओं, पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम के अंतर्गत इस समय हम बाइबल के प्राचीन व्यवस्थान के स्तोत्र ग्रंथ की व्याख्या में संलग्न हैं। आज के प्रसारण में 78वें भजन के 23 से लेकर 32 तक के पदों की व्याख्या हम प्रस्तुत कर रहे हैं। जो इज़राइल का चरवाहा है, हमारी सुन, जो भेड़ों की तरह यूसुफ को ले चलता है, जो स्वर्गदूतों पर विराजमान है, इफ्राइम, बेन्यामिन और मनस्से के सामने अपने को प्रकट कर, अपने सामर्थ्य को जगा और आकर हमारा उद्धार कर। श्रोताओं, ये थे स्तोत्र ग्रंथ के 80वें भजन के प्रथम पद। इन पदों के पाठ से ही हमने विगत सप्ताह पवित्र धर्मग्रंथ बाइबलिक परिचय कार्यक्रम समाप्त किया था। इस बात की ओर हमने आपका ध्यान आकर्षित कराया था कि 80वें भजन के साथ ही हम ऐतिहासिक तौर पर एक शताब्दी पीछे लौट आते हैं और उस युग पर दृष्टिपात करते हैं जब वर्ष 721 ईसा पूर्व इज़राइल की भूमि इफ्राइम, बेन्यामिन और मनस्से के क्षेत्रों में विभाजित थी तथा यूसुफ के नाम से चलती थी। उस युग में उत्तर की जातियां अस्सीरियाई लोगों द्वारा निष्कासित कर दी गई थी। 80वें भजन में इज़राइल के निष्कासित लोग ही प्रभु को पुकारते हैं। इस भजन की प्रस्तावना में हमने श्रोताओं का ध्यान इस बात की ओर आकर्षित किया था कि प्राचीन व्यवस्थान के युग में 3 चरणों में इज़राइली जाति को निष्कासन की पीड़ा भोगनी पड़ी थी। प्रथम चरण था 721 ईसा पूर्व, द्वितीय चरण 597 ईसा पूर्व और अंत में 587 ईसा पूर्व। इन वर्षों के अंतराल में संपादित ऐतिहासिक घटनाएं हमारे समक्ष कई सवाल खड़े करती हैं। उस युग की भयावह परिस्थितियों का विवरण प्रदान कर ये उत्तरों की मांग करती हैं। उसी प्रकार जैसे हम प्रभु यीशु मसीह के दुख भोग और क्रूस मरण के विषय में अनगिनत प्रश्नों के उत्तरों की अपेक्षा करते हैं। सच तो यह है कि यदि मानवीय दृष्टि से देखें तो स्तोत्र ग्रंथ के भजनों में हमें मानव संबंधों की जटिलता और साथ ही इतिहास की अकथनीय सापेक्षताओं के दर्शन मिलते हैं। 80वें भजन के प्रथम 3 पदों से स्पष्ट है कि इज़राइल के लोगों ने, चाहे वे उत्तर के थे अथवा दक्षिण के, प्रभु ईश्वर को अपने पूर्वज यूसुफ और दाऊद के युग से ही अपना गढ़, अपना दुर्ग और अपना चरवाहा मान लिया था और उसी नाम से वे उन्हें पुकारते रहे थे।
तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ मेरा। तुझे चाहता हूँ स्वामी, तुझे चाहता हूँ बस स्वामी, तू ही बल है मेरा, तू ही मेरी शरण शिला है, तू रक्षक गढ़ मेरा, तुझे चाहता हूँ बस स्वामी।
श्रोताओं, स्तोत्र ग्रंथ के 80वें भजन के प्रथम 3 पद वास्तव में इसराइलियों की पहली प्रार्थना है। ये संवेदनशील और निष्कासित लोग प्रभु ईश्वर से उसी प्रकार प्रार्थना करते हैं जैसे कि उनके पूर्वज दाऊद ने की थी। उन्होंने उसी प्रकार ईश्वर को पुकारा था जैसे उत्पत्ति ग्रंथ के यूसुफ ने। उत्पत्ति ग्रंथ के 48वें अध्याय के 15वें पद में इसराइल अपने पुत्र यूसुफ के लिए इस प्रकार प्रार्थना करता है, ईश्वर जिसके मार्ग पर मेरे पुरखे इब्राहिम और इसहाक चलते थे, वह ईश्वर जो जन्म से लेकर आज तक मेरा रक्षक रहा है, वह दूत जिसने मुझे हर विपत्ति से बचाया है, इन बच्चों को भी आशीर्वाद दे। और इन्हीं प्रार्थनाओं की वजह से यूसुफ हर संकट को पार करने में समर्थ बने, जैसा कि उत्पत्ति ग्रंथ के 49वें भजन के 24वें पद में लिखा है, याकूब के सर्वशक्तिमान के सामर्थ्य के कारण, इज़राइल की चट्टान और उसके चरवाहे के नाम के कारण, यूसुफ का धनुष सुदृढ़ रहा और उसकी समर्थ भुजाएं तत्पर। श्रोताओं, इस स्थल पर यह ध्यान दिलाना हितकर होगा कि राजा सुलेमान की मृत्यु के बाद यानी कि वर्ष 921 ईसा पूर्व उत्तर और दक्षिण के बीच विभाजन हो गया था। राजनैतिक तौर पर दक्षिण का राज्य यूदा का राज्य कहलाता था तथा उत्तर का राज्य इसराइल। हालांकि ईश शास्त्रीय दृष्टि से संपूर्ण ईश प्रजा का नाम इसराइल ही था, जिसमें उत्तर और दक्षिण दोनों राज्य शामिल थे और इस प्रजा के पारलौकिक चरवाहे थे प्रभु ईश्वर। जैसा कि एजिकेल के ग्रंथ के 34वें अध्याय के 11वें और 12वें पदों में लिखा है, प्रभु ईश्वर यह कहता है, मैं स्वयं अपनी भेड़ों की सुधि लूंगा और उनकी देखभाल करूंगा। भेड़ों के भटक जाने पर जिस तरह गरड़िया उनका पता लगाने जाता है, उसी तरह मैं अपनी भेड़ें खोजने जाऊंगा। आज यदि हम संत लुकस रचित सुसमाचार के 18वें अध्याय पर गौर करें तो इसके प्रथम 8 पदों में प्रभु येसु मसीह भी प्रार्थना करने के लिए शिष्यों को प्रोत्साहन देते हैं। प्रभु येसु उस विधवा का दृष्टांत सुनाते हैं जो न्यायकर्ता को प्रतिदिन तंग किया करती थी ताकि उसे न्याय मिल सके, और तंग आकर न्यायकर्ता उसके लिए न्याय की व्यवस्था कर देता है। उसी प्रकार येसु कहते हैं कि यदि हम ईश्वर से अनवरत और सतत प्रार्थना करते रहें तो अवश्य ही हमारी प्रार्थना भी सुनी जाती है। निष्कासन की पीड़ा भोग रही इसराइली जाति भी प्रभु से अनवरत प्रार्थना करती रही थी। 80वें भजन के प्रथम 3 पदों में इसराइली जाति की पहली प्रार्थना निहित है और आगे के पदों में हम इसराइली जाति की दूसरी प्रार्थना को पाते हैं। इस भजन के 4 से लेकर 8 तक के पद इस प्रकार हैं, ईश्वर हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। विश्वमंडल के प्रभु ईश्वर, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना को ठुकराता रहेगा? तूने उसे विलाप की रोटी खिलाई और उसे भरपूर आंसू पिलाए। हमारे पड़ोसी हमारे लिए आपस में लड़ते हैं, हमारे शत्रु हमारा उपहास करते हैं। विश्वमंडल के प्रभु, हमारा उद्धार कर, हम पर दया दृष्टि कर और हम सुरक्षित रहेंगे। श्रोताओं, जैसा कि हमने कहा कि 80वें भजन में निहित यह दूसरी प्रार्थना है, इस प्रार्थना से स्पष्ट है कि इसराइली प्रजा को प्रार्थना करने के बावजूद ऐसा महसूस हुआ था कि प्रार्थना करने के बावजूद उसके कष्ट और अधिक बढ़ गए थे, इसीलिए वह ईश्वर से प्रश्न कर बैठती है, तू कब तक अपनी प्रजा की प्रार्थना को ठुकराता रहेगा? इसराइली लोग अपनी प्रार्थना में कहते हैं कि ईश्वर ने उन्हें विलाप की रोटी खिलाई और भरपूर आंसू पिलाए, यानी कि वे दिन रात रोते और विलाप करते, ईश्वर की दुहाई देते रहे और दूसरी ओर शत्रु उपहास करते रहे। श्रोताओं, बहुत बार हमें भी इसी प्रकार का अनुभव होता है। हम प्रार्थना करते रहते हैं किंतु हमें लगता है कि प्रभु हमारी प्रार्थना को नहीं सुनते हैं, जबकि उचित समय और उचित क्षण हमें प्रार्थना का प्रत्युत्तर अवश्य मिलता है। क्योंकि ईश्वर के घर भले ही देर हो जाए, अंधेर नहीं हो सकती।
प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मान, प्रार्थना में जो कुछ मांगा पूरा करो हर मान, सारी खताएं जिसका किया अपमान, दिल में धीमी आवाज आई अपने गुनाहों को मान, जान लिया मैंने आवाज उसकी जिसका किया अपमान, कर दो लहू से साफ।